జయ రాధ మాధవ కుంజ విహారీ జయ గోపీ జనవల్లభ గిరివరధారే యశోదనందన మృదజనరంజన యశోదనందన మృదజనరంజన యమోనతీరా వనచారీ యమున తీరా వనచారే జయ రాధ మాధవ కుంజ విహారీ జయ రాధ మాధవ కుంజ విహారీ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే ಕೃಷ್ಣ ರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ರಾಧಾ ಗಿರಿಧಾರಿ ರಾಧಾ ಗಿರಿಧಾರಿ ರಾಧೆ ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಯ ಬಾಲದೇವ ಜಯ ಸುಭದ್ರ ಜಯ ಗೌರನಿತಾಯ 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 ಜಯ ಗೌರನಿತಾಯ ನಿತಾಯ ಗೌರ ಹರಿ ಬಾಲ ಹರಿ ಬಾಲ ಹರಿ ಬಾಲ ಹರಿ ಬಾಲ ಜಯ ಜಯ ಪ್ರಭುಪಾದ 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 ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್ ನಶ್ಚ ಪ್ರಾಯೇಶ ಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ ಭಗವತೀ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತೇರ್ಭವತಿ ನೈಶ್ಚಿಕೀ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಸ್ಕಂದ 9 ಅಧ್ಯಾಯ 4 ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 1. ಶ್ರೀ ಸುಕ ಉವಾಚ ನಾ ಭಾಗಃ ನ ಭಗ ಆಪತ್ಯಂ ಯಂ ತತಂ ಭ್ರಾತ್ರಃ ಕವಿಂ ಯವಿಷ್ಟಂ ವ್ಯಭಜನ್ ದಾಯನ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಂ. ಆಗತಂ ಶ್ರೀ ಸುಕ ಉವಾಚ ನ ಭಾಗೋ ನ ಭಗಾಪತ್ಯಂ ನ ಭಾಗೋ ನ ಭಗಾಪತ್ಯಂ ಯಂ ತಂ ಭ್ರಾತರ ಕವಿಂ ಯಂ ತಂ ಭ್ರಾತರ ಕವಿಂ ಯಂ ತಂ ಭ್ರಾತರ ಕವಿಂ ವ್ಯವಿಷ್ಟಂ ವ್ಯಭಜಂದಾಯಂ Yavishtam Bevajan Vyayam Brahmacharinam Agatam Brahmacharinam Agatam Nabhago Nabhagapatyam Nabhago Nabhagapatyam Yam tam brihat bhatra kavim Yam tam bhatra kavim Yavishtam vyabhajam dayam Yavishtam vyabhajam dayam Brahmacharinam agatam Gapatyam Navago Navagapatyam Tatam Ratraha Kavim Yavishtam Vyabhajana Dayam Brahmachari Nabhago Navagapatyam Tadam Bhatara Kavim Yavishtam Vyavajam Dayam Brahmacharinam Agatam Sri Sukha Uvacha Nabhago Navagapatyam Tatam Matara Kavim Vishtam Vyabhajan Dhyayam Brahmacharinam Agatam Sisuka Uvacha Nabhago Nabhagapatyam Matara Kavim Dayam Brahmacharinam Agatam Sri Sukha Uvacha Nabhago Nabhagapatyam Tam Tadam Bhratara Kavim Yavishtam Vyabhajan Dayam Brahmacharinam Agatam Sri Sukha Uvacha Nabhago Nabhagapatyam Yam Tadam Bhratara Kavim Yavishtam Vyabhajanam Dhyayam Brahmacharinam Agatam Sri Sukha Uvacha Nabhago Nabhagapatyam Yam Tadam Bhratara Kavim Yavishtam Vyabhajan Dayam Brahmacharinam Agatam Sri Sukha Uvacha Nabhago Nabhagapatyam Tam Tatam Bhrataram Kavim Yavishtam Vyabhajan Dhyayam Brahmacharinam Agatam श्री शुकावाच नाभागो नभगापत्यम् केम ततम् ब्राकरा कविम् प्रवेशम् व्यभजन्दायम् ब्रह्मचारिणमागतम् श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा नाभागः नाभाग नभगापत्यम् महाराज नभग का पुत्रिया यम जिस ततम पिता को भ्रातरः बड़े भाइयों ने कविम विद्वान यविष्टम सबसे छोटे विभजन बांट दिया दायम दान ब्रह्मचारिम ब्रह्मचारी जीवन स्वीकार करके नैश्चिक आगतम वापस आया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा अनुवाद और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जाए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा नभग का पुत्र नाभाग बहुत काल तक अपने गुरु के पास रहा, अतएव उनके भाइयों ने सोचा कि वह गृहस्थ नहीं बनना चाहता, इसलिए वापस नहीं आ रहा है। फलस्वरूप उन्होंने अपने पिता की संपत्ति में उसका हिस्सा ना लगाकर आपस में बांट लिया। जब नाभाग अपने गुरु के स्थान से वापस आया तो उन्होंने अपने हिस्से में अपने पिता को दे दिया। तात्पर्य ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं, एक तो वे जो घर लौटकर विवाह करके गृहस्थ बन जाते हैं और दूसरे वे जो आजीवन ब्रह्मचारी बने रहने का व्रत लेते हैं और बृहद व्रत कहलाते हैं। बृहद व्रत ब्रह्मचारी गुरु के स्थान से वापस नहीं आता, अभी तो वह रहता है और बाद में संन्यास ग्रहण कर लेता है। जब नाभागा अपने गुरु के स्थान में सेंस वापस नहीं आया तो उनके भाइयों ने सोचा कि उससे बृहद व्रत ब्रह्मचारी गृहस्थ कर लिया है, इसलिए उन्होंने उसका हिस्सा सुरक्षित नहीं रखा और जब लौटा तो उसके हिस्से में उनके पिता को दे दिया। ओम ज्ञात वीरंदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं संसजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णकरुणासिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेशगोपिकान्तराधाकान्तनमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नौवां स्कंद का चौथा अध्याय का शुरुआत है। तीसरा अध्याय में हमने सुना किस प्रकार ककुद्मी राजा अपने पुत्री रेवती को उन्होंने प्रदान किया बलराम जी को, बलराम जी उनको स्वीकार किए और उसके बाद वो विरक्त हो गए, वो बद्री का आश्रम चले गए नर नारायण ऋषि की सेवा में। तो ये नौवां स्कंद का मूल आधार ये है। दसवां स्कंद आने वाला है, नौवां स्कंद में दसवां स्कंद की तैयारी का पराकाष्ठा तक पहुंच गया है। क्या है वो तैयारी, व्हाट इज दैट प्रिपरेशन दसवां स्कंद का श्रवण करने की? वो तैयारी है वैराग्य। जब वैराग्य व्यक्ति के अंदर बहुत उच्च स्तर में रहता है तब उसको भक्ति को स्वीकार करना बहुत आसान हो जाता है। पहले स्कंद दूसरे स्कंद में भगवान की महिमा, भगवान का विराट रूप किस प्रकार, भगवान महान है, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण इत्यादि अनेकों अनेकों वर्णन करने के बाद नौवां स्कंद में ईशानुकता। ईशानुकता का अर्थ है कि भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन, श्री राधा भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, ये वर्णन किया जा रहा है। इस वर्णन करते हुए ये स्कंद में आपको प्राप्त होता है कि अनेकों अनेकों राजा हुए और ये सब राजाओं ने क्या किया, अंततः अनेकों कार्य किया, अंत में वो सब विरक्ति लिए। ये क्यों बताया गया है, ताकि हमको शिक्षा देने के लिए। इतने बड़े राजा थे, इतना सुख सुविधा थे, सब कुछ किया, अंततः उन्होंने क्या किया, वो विरक्त हो गए। क्योंकि ये कथा सुनने के द्वारा हमारे अंदर ये विचार आता है, इतना बड़ा व्यक्ति, इतना पैसा, इतना संपत्ति, उन्हें सब कुछ छोड़ दिया, इसका अर्थ क्या है, उन सब चीज में कुछ रखा नहीं है। जब इस प्रकार के मन में वैराग्य की भावना आता है तब व्यक्ति दसवां स्कंद में प्रवेश कर सकता है। तो इस प्रकार की विरक्ति के भावना के बिना दसवें स्कंद में प्रवेश करना केवल दसवां स्कंद हमारे मानसिक मनोरंजन के मात्र है। अगर सच में जब दसवां स्कंद में प्रवेश करना है कृष्ण लीला में, ये राजाओं का चरित्र को पढ़ना चाहिए जिस प्रकार सब लोगों ने वैराग्य लिया, तो ये नौवां स्कंद में खास करके उद्देश्य के द्वारा, उद्देश्य को रखते हुए सुखदेव गोस्वामी अनेकों अनेकों राजाओं का वर्णन करते हैं जिनके अंदर अति वैराग्य है। और जिनके अंदर ये वैराग्य है उन व्यक्ति को अंततः मूल फायदा हुआ, उनके परिवार में महान भक्त हुए। वैसे ये मनु के पुत्रों में नभग राजा हुए, मनु के पुत्र, उनका पुत्र का नाम था नाभागा। जैसे व्यास के पुत्र को वैयासिकी कहा जाता है, कुंती के पुत्र को कौंतेय कहा जाता है, उसी प्रकार नभग उसका पुत्र का नाम है नाभागा। तो इसलिए जो पहला शब्द है नाभागो नभग नभगपत्यम नभगापत्यम, नभगापत्यम का अर्थ क्या है, नभग से उत्पन्न हुए है नाभाग। तो ये नाभाग ने क्या किया, वो गुरुकुल में गए। वैसे वर्णन किया गया है शास्त्रों में वैदिक सभ्यता के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों परिवार में जन्म लिए पुत्र उनको गुरुकुल में जाना चाहिए। जो वैश्य हैं 15-16 साल की उम्र में गुरुकुल में वास करके 16 साल में पांच, वैसे तो जाते हैं 8-10 साल में, 5-6 साल गुरुकुल में रहेंगे और वापस आ जाएंगे घर में, 15-16 साल में वापस आ जाएंगे घर में। और क्षत्रिय होते हैं वो करीबन 7-8 साल की उम्र में बच्चा होता है तो उनको गुरुकुल में भेजा जाता है और 20-21 साल के अंतर्गत वो वापस घर आ जाता है। राजा के पास आ जाता है। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है वो 5 साल के बच्चे को ही गुरुकुल में भेजा जाता है और वापस वो 25 साल की उम्र में वो लौटने का विचार कर सकता है। तो लेकिन वैश्य और क्षत्रिय परिवार में जन्म लिए हुए थे, कंपलसरी था कि उनको वापस आना है ये उम्र में। बहुत प्राय बहुत कम दिखाई पड़ता है या ऐसा होता था कि वैश्य और क्षत्रिय प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो गुरुकुल में बहुत अनेकों साल रहे, शास्त्र का अध्ययन किए, तो ये सिस्टम हुआ करता था। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतो गुरुर्हितम, ये 11वां स्कंद में वर्णन हुआ है। ब्रह्मचारी उसी व्यक्ति को कहा जाता है जो गुरुकुल में निवास करता है, यानी गुरु के पास रहने वाला व्यक्ति को ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। अविवाहित व्यक्ति को ब्रह्मचारी नहीं कहा जाता है, उसको कुंवारा कहा जाता है। कुंवारा में ब्रह्मचारी में बहुत अंतर है। कुंवारा वो है अभी तक शादी नहीं हुआ या घर में रहता है, तो विवाह नहीं होना या विवाह हुए बिना रहना वही एकमात्र ब्रह्मचारी का लक्षण नहीं है। ब्रह्मचारी का सबसे पहला लक्षण है गुरुरितम वसन दांतो गुरुकुले वसन। तो गुरुकुल में निवास करते हुए केवल गुरु का हित के लिए कार्य करना, भले ही वो कितना ही बड़ा राजा का बच्चा क्यों ना हो या कोई गरीब ब्राह्मण का पुत्र क्यों ना हो, सबको समान गुरु जो है कोई भेदभाव नहीं करते। उनको जो मिलता है उसको भी वही मिलता है। हाँ, ये हम प्रत्यक्ष देखते हैं सुदामा और कृष्ण। सुदामा और कृष्ण दोनों गुरुकुल में थे साथ में, लेकिन शांतिपुर में दोनों को बराबर देखे। कृष्ण बड़े राजा थे लेकिन सुदामा विप्र है, ब्राह्मण गरीब होते हैं। तो गुरुकुल का जो ट्रेनिंग है अति आवश्यक है। जब तक एक बच्चा, एक लड़का खास करके, वो गुरुकुल में नहीं जाता है, गुरु का प्रशिक्षण नहीं ग्रहण करता है, तब तक वो जीवन में ना आध्यात्मिक प्रगति कर पाएगा ना भौतिक प्रगति कर पाएगा। तो गुरुकुल में बच्चों को भेजना ये वैदिक सभ्यता है, वैदिक सिस्टम है। तो इसके द्वारा क्या होता है, वो माता पिता को भी बच्चे से वैराग्य आता है और वो बच्चा जो है, वो लड़का जो है, वो स्वयं अपने पैर के ऊपर खड़ा रह सकता है, खुद अपना कपड़ा धोना जानता है, खुद अपना जीवन यापन करने की जो शिक्षा है वो अपना ग्रहण कर लेता है, अकेले रहने की कला उसको मान्यता देती है। ये घर में रह के वो माता पिता का भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होता है ना पुत्र का भी प्रगति नहीं होता है। तो इसलिए ये 5 साल की उम्र में ब्राह्मण के बच्चों को भेजना, 7-8 साल की उम्र में क्षत्रिय बच्चों को गुरुकुल में भेजना और 8-9 साल के बच्चों को या वैश्य के बच्चों को गुरुकुल में भेजना ये अति आवश्यक है। तो एक बार एक महाराज ने प्रवचन दिया, तो प्रवचन देते समय उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को गुरुकुल में 25 साल तक गुरुकुल में रहना चाहिए। सब लोग थोड़ा सा खिन हो गए। तो कम से कम 25 साल नहीं तो कम से कम आपको 10 साल तो गुरुकुल में रहना चाहिए, 10 साल कम से कम 1 साल तो रहना चाहिए। तो कुछ लोगों का 1 साल ही बहुत मुश्किल होता है, सब छोड़ के गुरुकुल में जाना, आश्रम में रहना कैसे हो सकता है 1 साल रहना, ठीक है 1 साल है, कम से कम 6 महीना हो सकता है, नहीं हमको लीव नहीं मिलता है। उन्होंने कहा चलो 6 महीना नहीं 1 महीना हो सकता है, लेकिन फिर भी बहुत डिफिकल्ट है। चलो 1 हफ्ता, 1 हफ्ता हो जाएगा लेकिन देखता हूं। चलो भूल जाओ, 1 दिन रहो, स्टे 1 डे। तो प्रश्न पूछे महाराज से कि वो 1 दिन में क्या फर्क पड़ने वाला है, मतलब रहना नहीं था उनको। तो महाराज ने कहा वो 1 दिन रहोगे जीवन भर उसको याद रखोगे। अगर 1 दिन भी ब्रह्मचर्य आश्रम में रहोगे, गुरु के हित के लिए कार्य करते हुए आश्रम में रहोगे, तो जीवन भर उस दिन को याद करके अपना जीवन बिताओगे। कम से कम क्या दिन था वो, दैट विल बी देयर। तो बात ये है कि ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन, ये आश्रम में निवास करना ये अति आवश्यक है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसे पहले रशिया में हुआ करता था या चाइना में भी ऐसा हुआ करता था, अभी नहीं है,
जो भी बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, सबको 2 साल का मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी था। उसके बिना उसको डिग्री नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है, और वो उस देश में रह नहीं सकता, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग लेना ही है। उससे क्या हो जाता है, वो गधा भी घोड़ा बन जाता है। घर में रहने से जो गधा के या घोड़ा जैसा भी उसके प्रवृत्तियां क्यों ना हो, वो व्यक्ति गधा बन जाता है। क्यों? सुख सुविधाएं हैं। जब बच्चों को आप सुख सुविधा बहुत देते हो, वहां भी बिगड़ जाते हो, वो बच्चा भी बिगड़ जाता है। इसलिए पहले के जमाने में राजा बड़े सब लोग गुरुकुल में भेजते थे। क्यों? गुरुकुल में गुरु ऐसा शिक्षा देते, सुबह जल्दी उठना है तो उठना है। घर में क्या होता है, बच्चा सो रहा है ना, माँ जाके उठाती तो पिता बोलते रहने सो रहे दो ना उसका बिचारा। लेकिन गुरुकुल में क्या है, अरे उठा तो कोई लात मार के उठाएगा, उठो उठो, अगर नहीं उठाया तो फिर पानी डाल देगा, उठना ही पड़ेगा। डिसिप्लिन तो होता है। जब तक इस प्रकार का डिसिप्लिन नहीं है, इस प्रकार का नियंत्रित जीवन नहीं होता है, उसका ट्रेनिंग नहीं मिलता है, तब तक जीवन में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो निकम्मा हो जाएगा आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से। इसलिए गुरुकुल में भेजना अति आवश्यक है। ये जो आजकल के जो स्कूल है वो भेजने से, उससे अच्छा तो घर में रखना अच्छा है। तो कुछ दिन पहले एक भक्त आया था मेरे पास, ने कहा प्रभु जी अभी बहुत खराब है स्कूल्स आजकल, इसलिए मैं होम स्कूलिंग शुरू किया है। होम स्कूलिंग का अर्थ क्या है, घर में बच्चे को रखेंगे, 5-10 बच्चों को इकट्ठा करेंगे, हम घर में उसको पढ़ाएंगे। मैंने कहा ठीक है, वो अच्छा है, लेकिन ये परफेक्ट चीज नहीं है। ये होम स्कूलिंग करके था नहीं कहीं। वैदिक सभ्यता में होम स्कूलिंग केवल स्त्रियों के लिए है, लड़कियों के लिए है। लड़कों के लिए घर में रहना ये उचित नहीं है, दे हैव टू गेट आउट द हाउस। तब उस लड़के को बचपन से ही माता पिता से वैराग्य का भावना आती है, और माता पिता को बच्चे से वैराग्य आता है, क्योंकि आसक्ति जो है वो पुरुष के लिए घातक है, और वही आसक्ति स्त्री के लिए अच्छा है। लेकिन आजकल कलयुग उल्टा है, तो स्त्रियां जो होती है हम हॉस्टल में जाएंगे, बच्चे बोलते, लड़के बोलते नहीं हॉस्टल में नहीं रहना है, हमको इधर रहना है, घर में रहना है। तो नहीं हो, बात यह है कि उनके सारे पुत्रों को भेजा गया था, उन्होंने अपने सारे पुत्रों को भेजा, लेकिन क्षत्रिय होने के नाते वो सब वापस आ गए 20-21 साल में। इधर ना भागा, वो गुरुकुल में ही रह गए, गुरुकुल में और उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगे और शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। तब बाकी पुत्रों ने सोचा, मनु के पुत्र यानी उनके बड़े भाइयों ने सोचा, ये नाभाग जो है वो वापस आने वाला नहीं है, वो उधर ही रहने वाला है, वही उधर ही संन्यास देने वाला है, गृहस्थ बनने वाला नहीं है। बहुत अच्छा हो गया, उसका प्रॉपर्टी हमको मिल जाएगा। आजकल जो दो भाइयों के बीच में जो प्रॉपर्टी का विवाद होता है वो नया चीज नहीं है, वो पूरा इतिहास है, पूरा महाभारत इसके ऊपर ही है, सारे शास्त्र इसके ऊपर ही है। जो पिताजी जो संपत्ति बनाते हैं, वो संपत्ति किसके लिए बना रहे हैं, जो कुत्ते जैसे पुत्र उनके लिए बना रहे हैं, जो एक प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, है कि नहीं? आप दो कुत्तों को या आप बहुत सारे कुत्तों के बीच में एक चपाती डालो, क्या करेगा वो, लड़ते हैं कि नहीं? वही प्रवृत्ति है। इसलिए जो पिताजी सोचता है कि मैं पुत्र के लिए बना के जाऊंगा, वो किसके लिए बना रहे, वो पुत्र जो कुत्ते जैसे पुत्र उनके लिए बना रहा है। तो इसलिए ये मूर्खता है, मेरे पुत्र के लिए बना के जाऊंगा, मेरे पौत्र के लिए बना के जाऊंगा, इट इज ऑल फुलिशनेस। ये बात इस भागवत में प्राप्त होता है। ऐसा जो अभी आजकल हो रहा है, ओल्ड एज होम में बेच देना, बस पिता का प्रॉपर्टी को ले लेना, ये इस श्लोक में प्रतीत हो रहा है। तो क्या हुआ बाद में, जब ये नाभागा वापस आए तो उन्होंने सोचा कि अब तो प्रॉपर्टी तो हम बांट लिए हैं, क्या बचा हुआ है, अब पिताजी बचे, तुम ले रहे हो पिताजी को, जो एसेट है हम लेंगे, और जो क्या उसको बोलते हैं एसेट एंड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी पिताजी लाइबिलिटी है आप ले लो। एसेट का अर्थ है जिससे हमको फायदा है उसको एसेट कहा जाता है, और जिससे नुकसान है वो उसको लाइबिलिटी कहा जाता है। पिताजी को क्या है, बुढ़ापे में देखभाल करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, उसके ऊपर खर्चा है, उसका प्रॉपर्टी से तो हमको इनकम है। चलो अभी तुम्हारे भाग में क्या करेंगे, हम पिताजी को दे देंगे, क्योंकि पिताजी को देखभाल करना वो भी बड़ा धर्म होता है, तुम वो धर्म को करो, हम पिताजी का संपत्ति को ले लेंगे। तो वो बात तो बाद में चर्चा करेंगे, सबसे पहले इस बात को चर्चा करेंगे कि जब ये नाभाग उधर आश्रम में रुक गए, गुरुकुल में रुक गए, तो ये लोगों ने सोचा कि उधर ही रहने वाला है, संन्यास देने वाला है। तो श्री प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि दो प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। एक होता है उपकुर्वाण ब्रह्मचारी, दूसरा होता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी। उपकुर्वाण ब्रह्मचारी वो है जो ये मन में रखता है कि मैं अभी ब्रह्मचारी आश्रम में हूं, गुरुकुल में हूं, तो कुछ समय के बाद वापस जाऊंगा, विवाह करूंगा और अपने घर गृहस्थ में रहूंगा, और कुछ समय के बाद वो भी छोड़ के संन्यास लूंगा। यानी ब्रह्मचारी आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम में जो जाता है वो उद्देश्य के साथ ब्रह्मचारी आश्रम में रहता है, उसको उपकुर्वाण ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो क्योंकि वर्णाश्रम के अनुसार एक व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में भी जाना चाहिए जिस व्यक्ति को वो गृहस्थ बनना है, तो वैसे प्राय ब्रह्मचारी होते हैं वो इसी उद्देश्य के साथ वो गुरु के पास जाते हैं कि हम इतने साल तक आपके शरण में रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे, बाद में हम विवाह करेंगे। लेकिन कुछ और प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं, वो उनको बृहद व्रता कहा गया है। बृहद व्रत का अर्थ है बृहद महान व्रत को धारण किए। ये महान व्रत है, क्या व्रत है वो, मैं जीवन भर विवाह किए बिना रहूंगा, मैं सीधा ब्रह्मचारी से संन्यास ग्रहण करूंगा, इसको बृहद व्रत कहा गया है। क्योंकि ये पालन करना अति मुश्किल है, असत में विवाह किए बिना रहना साधारण बद्ध जीव के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये कठिनाई बहिरंगी कठिनाई नहीं है, अंतरंगी कठिनाई है। तो कोई व्यक्ति कह सकता है नहीं, उसकी कामवासना सताता होगा इसलिए उसको गृहस्थ बनना होगा। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, जो ब्रह्मचारी ऐसा सोचता है कि मेरी कामवासना सता रहा है इसलिए मैं विवाह करूंगा, वो अस्तित्व में वो ना ब्रह्मचारी और ना गृहस्थ है। अस्तित्व में ये बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है जिसके ऊपर हम थोड़ा सा विचार करके चर्चा करेंगे, वो क्या कारणों की वजह से व्यक्ति को विवाह करना चाहिए। अगर कोई सोचता है कि मुझे कामवासना सता रहा है इसलिए मैं विवाह करूंगा, वो ना ब्रह्मचारी है ना आगे जाके गृहस्थ बनेगा। गृहस्थ उसी व्यक्ति को बनना चाहिए, या वो गृहस्थ आश्रम की जो डिजाइन है, जो व्यवस्था भगवान ने बनाई है, वो अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए नहीं बनाया है, अपनी जो स्थूल कामनाओं को पूर्ण करने के लिए नहीं बनाया है। हर व्यक्ति के अलग अलग प्रकार की आसक्तियां होती हैं, तो आसक्तियों से छूटना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोगों का या प्राय सभी लोगों का ये भावुकता के प्रति आसक्ति रहता है, भावुकताएं होती हैं मन में, कोई मुझे पूछना चाहिए, कोई बात करने वाला चाहिए, कोई मेरे साथ में बैठे, मेरा दुख सुख को सुने, ये इस प्रकार की भावुकता वाली बातें होती हैं। तो प्राय लोगों के मन में इसको बिना नहीं रह सकते, इसके बिना नहीं रह सकते, उनको बहुत दुख लगता है। तो भगवान ने क्या किया, एक आश्रम बनाया जिसका नाम है गृहस्थ आश्रम, जिसके अंदर इस प्रकार की भावुकताओं को, भावनाओं को थोड़ा सा शांतना मिल जाती है। अगर मैं बीमार हूं कोई आके पूछे, अगर मैं कहीं जाता हूं तो मेरे साथ में छोड़ने के लिए आए, अगर मैं कहीं जाता हूं वापस आने पर मुझे रिसीव करने के लिए कोई आए, तो इस प्रकार की भावुकताएं रहती हैं इसमें। कोई मान लो कि आप कहीं बाहर गए, वापस आए, तो कोई आया नहीं आया तो क्या फर्क पड़ने है? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी ऐसा रहता है, दिल को बुरा लगता है। तो ऐसी भावनाएं जो हैं वो गृहस्थ आश्रम में पूर्ण हो सकता है, इसलिए भगवान ने गृहस्थ आश्रम बनाया है। तो जो व्यक्ति ये सोचता है कि मेरी कामेच्छा पूर्ण होगा, वो बड़ा मूर्ख है, वो कभी होने वाला नहीं है। जो ये सोचे कि मेरी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए मैं गृहस्थ बनूंगा, ये इस प्रकार की जो भावना के साथ जाता है, ना उसकी कामना पूर्ण होगा, ना उसकी भावनाएं पूर्ण होंगे, वो केवल दुख को अनुभव करेगा। आजकल जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है उनको अनेकों प्रकार के दुख क्यों अनुभव होते हैं, क्योंकि वो सोच रहा है कि ये गृहस्थ आश्रम जो है मेरी कामेंद्रियों को, काम इच्छाओं को पूर्ण करने का सुविधा है। ये तदाकित नहीं है, इट इज नॉट सो। भगवान ने कोई भी आश्रम में अपने जो काम वास्ताओं को पूर्ण करने का व्यवस्था नहीं बनाया है। गृहस्थ आश्रम में प्रभुपाद ने कहा लाइसेंस दिया है। लाइसेंस का अर्थ क्या है, वो थोड़ा बहुत, लेकिन वो थोड़ा बहुत से कोई व्यक्ति का कोई काम वासना पूर्ण होने वाला नहीं है। तो इसलिए चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, हर व्यक्ति को यह ध्यान में रखना होगा कि अपनी काम वासना को तो नियंत्रण करना ही है, तो गृहस्थ आश्रम में भी करना है। गृहस्थ आश्रम किसके लिए छूट दिया गया है, लाइसेंस किसके लिए है, ये भावुकता वाली चीजें हैं, उसको थोड़ा बहुत मान लीजिए आप थक गए हो तो आपकी पत्नी एक ग्लास लेके आएगी, पानी लेके आएगी, या कुछ आपको क्या चाहिए पूछेगी। अभी आश्रम में रहोगे तो क्या होगा, आपको जो बनाए वो लेना होगा। तो ये जो भावुकता चीजें हैं उसको पूर्ण करने की व्यवस्था है गृहस्थ आश्रम। तो जो लोग गृहस्थ बनने का विचार करते हैं, ये कभी भी ये मन में मत रखिए उधर जाऊंगा मैं अपने इंद्रियों को नियंत्रण कर पाऊंगा या अपनी काम वासनाओं को पूर्ण करूंगा, ये भावना से कभी भी गृहस्थ आश्रम में जीना चाहिए। तो दूसरा बात है नैष्ठिक ब्रह्मचारी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी सोचता है कि अंततः मुझे संन्यास देना है या हर व्यक्ति को संन्यास देना ही है, तो ऐसा क्यों है कि मैं ये गृहस्थ बनू, बाद में करूं, बाद में हंगामा करके पूरा संन्यास लू, अभी से ले लेता हूं। क्या कुछ दिनों की बात है, जैसे इतने साल निकल गए हैं बिना स्त्री का संग का, और कुछ साल निकाल दूंगा, इतने साल मैं जो भी गुरु का आशीर्वाद से जो मिल रहा है उससे संतुष्ट रहा, अब मैं 10 साल रहा तो और 10 साल सही खत्म हो जाएगा और वृद्धावस्था आ जाएगा और मुझे मृत्यु आ जाएगा, इसमें क्या है, क्यों ये सब झंझट में पड़ना। इस प्रकार का जो बुद्धिमता के द्वारा जो विचार करता है वो व्यक्ति, उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है। क्यों, वो बुद्धिमान है, जो अपनी भावुकताओं के प्रति ज्यादा विचार करता है, मुझे दुख लगा, मुझे बहुत खराब लगा, वो जो है वो बुद्धिमान नहीं माना जाता है। तो हमारी बुद्धि के द्वारा हमारी भावुकताओं को, जो व्यक्ति अपनी भावुकताओं को नियंत्रण कर सकता है, वो व्यक्ति जो है नैष्ठिक ब्रह्मचारी रह सकता है। जो अपनी ये सोच के, एक व्यक्ति भक्त ने कहा, प्रभु जी मुझे विवाह करने का मन कर रहा है। मैं बोला क्यों, क्योंकि मेरा इंद्रियों को नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। बोला क्या गारंटी है विवाह होने का घर नियंत्रण होगा, इज नो गारंटी। तो मैं उनको एक प्रसंग सुनाया, एक भक्त एक श्री प्रभुपाद के शिष्य प्रभुपाद जी का मसाज कर रहे थे, और मसाज करते हुए बहुत चिंतित लग रहे थे, कुछ कहना था उनको प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि क्या कहना चाहते हो, तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी आई वॉन्ट टू टेक संन्यास, मुझे संन्यास लेना है। तो प्रभुपाद जी ने पूछा क्यों लेना चाहते हो, ने कहा कि बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई लस्ट, क्योंकि मैं अपने इंद्रियों को नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूं। तो प्रभुपाद जी हंस के उन्होंने कहा कि आई विल गिव यू संन्यास टुमारो। जो व्यक्ति सोचता है कि अपने इंद्रियों को नियंत्रण नहीं कर रहा हूं उसको संन्यास देना चाहिए। क्यों, एक बार सन्यासी बन गया, कोई स्त्री तो उनके पास आएगी ना, उनके पास ना, उनके ना वो उसके पास जाएगा। ये है, तो ये जो प्रभुपाद ने ये नहीं सोचा ये अपने इंद्रियों को नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूं, प्रभुपाद आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, तो प्रभुपाद जी उनको सीधा बोलते हैं, अच्छा यू कैनॉट कंट्रोल योर सेंसेस, दैट इज यू वॉन्ट टू गेट मैरिड, इसका अर्थ क्या है, यू वॉन्ट टू एंजॉय सेंसेस, इसका अर्थ क्या है, गृहस्थ बनने के बाद भी कुत्ते का जीवन यापन करोगे, दैट इज नॉट ए प्रॉपर एटीट्यूड। तो ये बात को विचार करना चाहिए, हमारी इंद्रिया नियंत्रण में नहीं है तो इसलिए मैं विवाह करूंगा, विवाह जो है, गृहस्थ आश्रम जो है वो कोई सोल्यूशन नहीं है इंद्रियों को नियंत्रण करने की, ये कोई लाइसेंस नहीं है, ठीक है जैसे चाहे वैसे जिएंगे, इट इज नॉट सो। तो ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी इस प्रकार विचार करता है, क्या विचार करता है, कुछ दिन निकल गए और कुछ दिन बाकी है, चलो लेट अस बी पीसफुल, इतना झंझट में कहे मेरे जीवन में पूछे ना पूछे, मेरी भावुकताओं को कोई ख्याल करे ना करे, क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ये विचार करता है कि कितने लोग जो है ये भावुकता के वश में आके गृहस्थ बने, बाद में अंदर क्या हो रहा है किसको क्या मालूम, अंदर जो है बहुत रोज डांट पड़ रहा है, बाहर तो हंसता हंसता आता है कि मेरे पास तो एक बहुत सुंदर परिवार है, कैसे हो, बहुत अच्छे हैं। कुछ दिन पहले मुझे SMS आया था, यार भागवतम क्लास में बोलना नहीं चाहिए। SMS में क्या लिखा था, हस्बैंड का अर्थ क्या है, जो बैंड बजने पर भी हंसता है। हस्बैंड हमारे शुद्ध से प्रभु बहुत एक्सपर्ट है ऐसे एसएमएस भेजने में. तो वापस ये नाभाग के विषय में चर्चा करेंगे. तो बाकी सब पुत्रों ने सोचा, बाकी उनके भाइयों ने सोचा, ये तो आने वाला नहीं है, ये तो ब्रह्मचारी बन गए, तो साधु है, अभी हम मैनेज करेंगे. क्योंकि ये साधु जो है उसको मैनेजमेंट तो आता नहीं, उसको उसको धन से संपत्ति से क्या लेने देना है. चलो उसको गुरुकुल में शास्त्र अध्ययन करने दो, अभी अच्छा हो गया, हम तो अभी इधर क्या करेंगे, हम अपना संपत्ति ले लेंगे. लेकिन क्या हुआ कि नाभाग कुछ समय के बाद वापस घर आए, उनके राजा के पास आए. तो सारे भाइयों ने कहा, आओ देखो हमने तो संपत्ति सब बांट लिया है, अभी तो हम आपको दे नहीं सकते, लेकिन एक महान संपत्ति है जिनसे सारा संपत्ति आया है. वो कौन है? हमारे पिताजी, वो तुम्हारा संपत्ति है. ये बिजनेस है, व्यापार में ऐसे होता है ना, कन्विंस करते हैं. आपको जो मिल रहा है ना, जो हमको नहीं मिला वो आपको मिल रहा है. तो ये नाभाग ने क्या किया, आगे वर्णन आता है कि नाभाग पिताजी के पास गए, ने कहा कि मेरे भाइयों ने कहा आप मेरे संपत्ति हो, तो मैं आपको देखभाल करना चाहता हूं, तो आप मेरे साथ रहिए, मैं सेवा करूंगा. आगे की स्टोरी में आता है, नाभाग के पिताजी नाभग ने कहा कि बेटा तुम्हारे भाइयों ने तुमको धोखा दिया है. तो पिताजी का कंसर्न था कि मैं अपने पुत्र को संपत्ति प्रदान करूं. बाद में वो कहते हैं कि तुम जाओ, इधर यज्ञ चल रहा है, वो सारे ऋषि मुनिगण यज्ञ कर रहे हैं, तुमने जो अध्ययन किया है, जो विद्यानामक संपत्ति है, वो संपत्ति को तुम उधर प्रदान कर लो, क्योंकि उधर के ब्राह्मणों को कुछ विद्या नहीं आता है. जैसे विश्वा देवा करके कुछ यज्ञ होता है, मंत्र होते हैं, तुम मंत्र दो, वो सब जो है वो यज्ञ करके स्वर्ग जाएंगे, उस पर दक्षिणा मिलता है, वो तुम्हारा संपत्ति है, वो संपत्ति ये राज्य की संपत्ति से बढ़कर है, तुम जाओ. इसके द्वारा ये सिखाया जा रहा है, विद्या जो है वो महान संपत्ति होता है. गुरुकुल में जो संपत्ति प्राप्त करता है शिष्य, वो संपत्ति राजा का संपत्ति से बढ़कर होता है. क्योंकि राजा का जो संपत्ति होता है, उसका वजह से उनको पूजा प्राप्त कहाँ होता है, केवल उनके राज्य में होता है. वैसे कहावत है, राजा स्वदेशे पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते. जो राजा जो है वो अपने देश में सब लोग उनको पूजा करेंगे, लेकिन जैसे पोस्ट निकल गया राजा का, तो कोई उसको पूजा पूछता नहीं है. लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते, जहां जहां जाता है उसको हर चीज मिल जाता है. इसलिए विद्या जो धन है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है. बाकी जो संपत्ति है वो आता है जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है. अगर जो विद्वान होता है उसको चाहे तो ये संपत्ति वैसे प्राप्त कर सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है. इसलिए गुरुकुल में निवास करते हुए विद्यानामक जो संपत्ति है जो प्राप्त करते हैं, उनको एक विचार नहीं करना चाहिए, देखो मेरा भाई तो बहुत कमा रहा है, ये वो करा. लेकिन जो आश्रम में रह के जो हम कमा रहे हैं, विद्या भक्ति वैराग्य, ये जो है साधारण संपत्ति, इससे महान संपत्ति माना गया है. क्योंकि ये जो संपत्ति है जो दिखाई पड़ रहा है बाहर जगत में, धन है, धन जायदाद वगैरह है, वो जिसके पास रहता है उसको डर रहता है. किसका डर रह जाता है? चोरी का डर रहता है, कोई चोरी ना कर ले. और क्या डर रहता है? कोई ये संपत्ति खर्च ना हो जाए, इसका डर रहता है. जिस जिसके पास संपत्ति है उसको निश्चित रूप में चोरी का डर रहता है. अगर चोरी का डर नहीं, एकदम तिजोरी में लॉक करके रखा है, कोई सोचता होगा. लेकिन ये डर जो है उससे मुक्त हो ही नहीं सकता. क्या डर? खर्चा हो जाएगा. ये डर से कोई मुक्त नहीं हो सकता, चाहे वो बैंक में हो, तिजोरी में हो, मेरा धन खर्चा ना हो जाए. उसकी वजह से नींद नहीं आता उसको, वो उठ के फिर वापस संपत्ति खर्चा तो नहीं हुआ, इतना बराबर है ना बैंक बैलेंस, बराबर है मैं तिजोरी बैलेंस, उठ के रात को खोल के गिनता है, गिन के वापस रखता है, वापस गिन के वापस, हाँ एकदम बराबर है, सो जाता है. तुरंत तो उसको वापस डर लगता है, मैंने ये तो नहीं किया, मैं तो बराबर बंद तो किया ना तिजोरी. यार चोरों से डर की बात तो छोड़िए, और खर्चा करने की प्रवृत्ति से डर की बात छोड़िए, अपने आप से डरता है ये. लेकिन विद्या नामक जो संपत्ति है वो क्या है, उसका स्वभाव क्या है? वो जितना उसके पास है उतना वो विरक्त होता है, उतना वो संपत्ति उसको अभय प्रदान करता है. अभी ये जो संपत्ति है भौतिक संपत्ति, अगर कोई उसको बांट देता है वो खत्म हो जाता है, लेकिन विद्या ऐसी संपत्ति है आप जितना बांटोगे उतना वो बढ़ता है। इसलिए जितना आप विद्या अर्जन करना चाहते हो उसके लिए इतना बांटना चाहिए। ये ब्रह्मचारी के लिए बड़ा सुविधा है, उनको जितना हो सके उतना अध्ययन करना चाहिए, जितना हो सके उतना बांटना चाहिए। जितना वो करते जाएंगे तो क्या होगा, उतना उनकी संपत्ति बढ़ेगी। तो ये विद्या का जो संपत्ति है ये नाभाग उनको प्राप्त था। इसकी वजह से उनके पिताजी ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भाइयों ने ये संपत्ति के धोखा दिया, तुम जाओ आपको संपत्ति प्राप्त होगा। जैसे वो संपत्ति प्राप्त हुआ, मैं आगे की स्टोरी और बता रहा हूं क्योंकि वो बताएंगे नहीं तो पूरा नहीं होगा आज का प्रसंग। तो नाभाग गए वो ऋषि मुनियों के पास, उनका सारा संपत्ति उनको मिला यज्ञ से जो दक्षिणा मिला। वो दक्षिणा लेके जब ये दक्षिणा प्राप्त कर ही रहे थे, वो संपत्ति लेने वाले थे, उस समय एक काला सा व्यक्ति आया। उन्होंने कहा नहीं ये सब मेरा है, छोड़। नाभाग शांति से अपने पिताजी के पास गए तो पिताजी ने कहा ये सही बात है पुत्र, जो तुम्हारे पास में आए ये कहते हुए कि सारा संपत्ति तुम्हारा है ये उनका है, ये कोई और नहीं शिव जी का है। शास्त्र में लिखा है यज्ञ में जो भी दान प्राप्त होता है, दक्षिणा प्राप्त होता है, वो शिव जी का है, इनकी संपत्ति है, तो उनको दे दो। तब नाभाग ने कहा सब आप ले लीजिएगा। तो इससे उन्होंने क्या प्रदर्शित किया, वैराग्य प्रदर्शित किया। जैसे वैराग्य प्रदर्शित किया शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होके उनको कृपा किए, इनके ऊपर ऐसा विशेष मंत्र दिए और विशेष कृपा किए जिसके वजह से नाभाग का एक पुत्र प्राप्त हुआ। विवाह किया था उनका वर्णन इतना प्राप्त नहीं होता है, उसके बाद उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, वो पुत्र का नाम है अम्बरीश। ऐसा वर्णन नहीं है उनके जो भाइयों का जो पुत्र है वो निकम्मे हो गए। क्यों? क्योंकि वो पिताजी लुटे रहे हैं, पिताजी आसक्त है, वो सेंस एंजॉयर है, उनको कैसे पुत्र प्राप्त होगा, उसी प्रकार का पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन नाभाग उनके वैराग्य उनकी विद्या की वजह से कैसा पुत्र प्राप्त हुआ, अम्बरीश महाराज, जिनके बारे में आज तक हम चर्चा करते हैं। मत परा भक्त है ये पूरा अध्याय उसके लिए है। भगवीता है भगवान इनके बारे में कहते हैं कि सिद्ध प्रज्ञश्च काबाश, उसके उत्तर में भगवान भगवीता में कहते हैं मत परा भक्ति बारे में कहते हैं। मत परा का वर्णन करते हुए श्री बद्रीनाथ विद्याभूषण कहते हैं मत भक्ति प्रभावेन सर्वेंद्रिय विजय सुलभेति भावः। मत भक्ति प्रभावेन भगवान कृष्ण की भक्ति प्रभाव की वजह से सारे इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है बहुत आसानी से। इस बात को उदाहरण के रूप में सारा जगत को अम्बरीश प्रदान प्रस्तुत किया। नवधा भक्ति के सारे अंगों को उन्होंने पालन किया। वैसे पुत्र पिता का अगर कुछ संपत्ति है तो उनका पुत्र होता है। तो नाभा को कैसे पुत्र प्राप्त हुआ, अम्बरीश महाराज जैसा। क्यों? उनकी वैराग्य की वजह से। हम देखते हैं अंत में अम्बरीश महाराज में भी वैराग्य दिखा है। ये पूरा नवा स्कंद ये ध्यान में रखिए, दसवां स्कंद की तैयारी है। वो क्या तैयारी है, ये केवल इसी बात को, ये इतने इतने बड़े लोगों ने छोड़ दिया है तो हमारा क्या, हमारी संपत्ति क्या उसके सामने, छोड़ दो उसको, अभी उसके बारे में स्मरण मत करो। और जितना स्मरण करते रहोगे उतना अगला जन्म लेना पड़ेगा, आपको ऐसे अच्छे पुत्र प्राप्त नहीं होंगे। तो इसलिए विद्या और वैराग्य को पुष्ट करते हुए ये नौवां स्कंद में इन सब भक्तों का वर्णन, इन सब राजाओं का वर्णन है। तो हम इधर जानते हैं कि नभग के और पुत्र थे, उनको क्या चाहिए था, राज्य चाहिए था, पिताजी नहीं चाहिए। तो वैसे ही आजकल हम देखते हैं लोग जो हैं पिताजी का संपत्ति को चाहते हैं, पिताजी को नहीं चाहते। आई वॉन्ट द प्रॉपर्टी ऑफ माई फादर, आई डोंट माइंड माई फादर। जब पिताजी को देखभाल करने की बात आता है तो नहीं हो पाएगा, कलयुग का लक्षण है। एक पिताजी चार बच्चों को देखभाल करेंगे, चार बच्चे मिलकर पिताजी को देखभाल नहीं कर सकते। जैसे है एक युधिष्ठिर महाराज और व्यक्ति के प्रसंग था, व्यक्ति ने कहा कि मैंने एक बड़ा घड़ा देखा उसके अंदर चार छोटे छोटे बर्तन को भर दिया था पानी से, जब वापस वो चार बर्तन से उस घड़े में पानी भरा तो घड़ा कम हो गया, पानी घड़ा भर नहीं पाया, तो ऐसा कैसे क्या हो गया? ये कलयुग का लक्षण है। कलयुग का लक्षण ये है, एक पिताजी बेचारे सारे बच्चों को कोई कमी होते हुए नहीं देखेंगे, कुछ कमी नहीं है। जब चार बच्चे बड़े हो जाएंगे, पिताजी को बोलेंगे, पिताजी जो कि हम तुम्हारे पास पैसे नहीं है, आप जो है ओल्ड एज होम में जाइए, हम सारे पुत्र जो है वो हमको एक एक लाख रुपए निकालेंगे, ऐसा मैंने सुना है नर्मदा के तट के ऊपर एक बड़ा ओल्ड एज होम है, वृद्धाश्रम, उधर जाइए। तो ये क्यों है, ऐसी परिस्थिति क्यों है? इसके पीछे मुख्य कारण है आध्यात्मिक शिक्षा का अभाव। खुद के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो क्या ले पाए अपने पुत्रों को? जब उनके पास आध्यात्मिक शिक्षा है तो अपने बच्चों को प्रदान करेंगे, और बच्चे उस पिताजी को हमेशा निर्भर करेंगे। निर्भर करते करते जब अंत में या समय आता है, वृद्धावस्था आता है, पिताजी व्यवहारिक तरीके से एक आध्यात्मिक शिक्षा देते पुत्रों को, क्या है? वो घर छोड़ के चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं। ये आखिरी शिक्षा है पुत्रों को देना। पिताजी का कर्तव्य है पुत्रों को वैराग्य सिखाना। आसक्ति सिखाना जो है पिताजी का वास्तविक कर्तव्य नहीं है। तो ये बातें हमारी मन में आई इस सब श्लोक में। वैसे इस श्लोक में बहुत सारे शिक्षाओं को हम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न वगैरह तो पूछिए। प्रश्न ठीक ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद की जय।